प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप बुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उत्तर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उत्तर भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जा मैं गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो त्यो ही रहूं, जो देवो सुखाऊं। सात द्वीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हो भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग आदीन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको ना। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षिक बरे विकार, तुम दाता दुख बंधना, मेरी करो संवार। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप जी इस शुभ समागम में पहुंच पाए। जिन पुण्य प्राणियों के पूर्व जन्म के संस्कार अत्यधिक होते हैं, वे ही प्राणी ऐसे शुभ समय का लाभ उठा पाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने हमें आकर के वो यथार्थ ज्ञान दिया है कि हम जिसके अभाव से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। और उस ज्ञान को हम बार बार सुनेंगे, सुनकर उसके ऊपर फिर असर करेंगे, अमल करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो फिर हम अपने उस लोक में पहुंच जाएंगे, जहां जाने के बाद इस प्राणी की कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं आती, युवा शरीर रहता है, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई कार्य करने को नहीं, प्रत्येक सुविधा वहां उपलब्ध रहती है परमेश्वर के सच्चे दरबार में सतलोक में। अब हम इतना कुछ ज्ञान सुनते हैं और फिर भी हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती जितना परमात्मा चाहते हैं। जिन प्राणियों को ये सत्संग सुनने को ही नहीं मिला उनका तो दुर्भाग्य है ही है, और जिनको ये सुनने को मिल रहा है वो भी लग रहे हैं बेचारे जैसे पहली कक्षा के बालक हुआ करें, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता से प्रसन्न किया करते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, पिता कोई कार्य कर रहा है तो वो उस वस्तु के बारे में पूछते हैं। जैसे किसी ने ये पेन रखा है साथ में और बच्चा आता है छोटा सा और उठते ही पूछता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है पेन है बेटा ये। वो फिर पूछता है ए, वो फिर कहता है पेन है ये ए, बच्चा का इतना ही प्रश्न होता है ए, फिर कहता पेन है ये ए, पेन नू कह कह वो चल पड़ता है। उसकी बुद्धि इतना ही काम करती है, वो ये नहीं सोच रहा कि पिताजी गलत कह रहे हैं, पर वो कैच नहीं कर रहा पिताजी ये बता के रहे हैं, वो ए ए करके चल ही देता है, कोई और खेल में लग जाता है और पिताजी से वो सब सुन भी जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी बुद्धि पूरा काम करने लग जाती है तो उसको फिर पिताजी कहता बेटा पेन ला उठा के, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और वही पेन उठाकर पिताजी को दे देता है। तो अब जो आप सत्संग में आ रहे हो और जिनके हृदय में इतनी तड़फ नहीं बनती जितनी ये दास बनाना चाहता है, तो आप बालक हो, आपकी अभी ए समाप्त हुई नहीं है। और जिनकी ए समाप्त होगी वो प्रत्येक सत्संग में आते हैं सौ काम छोड़ के, वो संकेत समझन लाएगी, उनकी बुद्धि काम करने लाएगी, वो समझ गए उन सैन को संकेत को जो गुरु जी संकेत दे रहे हैं परमात्मा ज्ञान बता रहे। तो जिनकी ए मिट जाएगी फिर वो सैने हो जाएंगे और समझदार होने के बाद ही वो सौ खतरों से बचेंगे। छोटा बालक है जिसकी ए नहीं मिटी है, जिसने न्योय नहीं बेरा यू पेन है और पिताजी बता भी रहा है, और वो ये भी नहीं मान रहा कि पिताजी गलत बता रहे होंगे और उसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहा, तो वो बालक है। तो वो बच्चा कभी भी मार खा सकता है, वो कोई बिजली के नंगे तार को भी आतिशबाजी समझकर जो स्पार्क कर रहा हो उसको भी पकड़ लेगा और जान से हाथ धो बैठेगा, वो सर्प को भी पकड़ लेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं, और उसको वो डस जाने से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये दास ये देख रहा है कि जिनकी ए मिटगी वह नहीं चूकते, सौ काम छोड़ कर आते और उन कामों को फिर परमात्मा किया करता है। जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे तब हम परमात्मा के लिए चलते हैं, और परमात्मा हमारे कार्य कब करता है, जब हम तन मन धन से उसको समर्पित हो जाएंगे और जीवित मर जाएंगे। जीवित मरना किसको कहते हैं, जीवित मरना किसे कहते हैं? जैसे आप जिस सत्संग में आ रहे हो आपके मन में सौ सौ कल्पनाएं उठती हैं जो दूर देश से आते हैं, भाई कहीं इस कार्य में ये नुकसान ना हो जावे, ये कार्य ना बिगड़ जाए मेरा, तो उनको परमात्मा संकेत करते हैं कि ये देखो एक व्यक्ति किसी कामवश चंडीगढ़ गया नाइट सर्विस से और वापस आना था किसी विशेष काम था घर पे, उसको रात को ही वापस पहुंचना था। कितना इम्पोर्टेंट वर्क होगा, कितना अनिवार्य कार्य होगा जिसके लिए रातों रात गया फिर वापस आ रहा था, और रस्ते में पानीपत के पास एक्सीडेंट दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। अब वो बिना रहे और इम्पोर्टेंट काम भी बिगड़ गया। आप ये सोचोगे, विचार करोगे, परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना है, ये कर पाड़न की है, इनके ऊपर अमल करना है। आप जी ने मन ने कह दिया, इस दास ने सुना दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा बहुत अच्छा ज्ञान सुना, अरे सर हुआ नहीं, फिर तो वह एक ही बात है, तोता वो तोते वाली बात है। तो एक कोई तोता बेचने वाला पिंजरे में तोता लिए जाओ था। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा भाई तोते की आयु बहुत लंबी होती है और ये जंगल में सैर सपट्टे करने वाला जीव सारी उम्र इस कैद में रहेगा। उसने दया करके ने सोची इसको लेकर पिंजरे समय इसको मोल लेकर के और छोड़ दूंगा जंगल में। उसने उस तोता बेचने वाले से कहा भाई इस तोते की कितने कीमत है? बेचने वाले ने कहा 5 रुपये पिंजरे समेत। उसने 5 रुपये अदा करके और वो पिंजरे समेत तोता ले लिया। उस तोते को पढ़ाया, समझाया और पूछा बेटा तू कैसे फंस गया इस शिकारी के जाल में? उसने तोते ने बताया कि गुरुजी मैं इसने वहां दाने डाले, जाल बिछा रखा था, हमने जाल देखा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, हमने दाने दाने दिखे थे और हम दाने खाने के लिए वहां गए, इसने जाल में फंसा लिए। तो गुरुजी ने कहा बेटा आगे से तुम ऐसे कोई दाने को डाल रहा हो, जाल बिछा रखा हो, तो उसमें दाने मत खाइयो कि वो दाने तुम्हें सदा सुखी कर देंगे, तुम जंगल में घूमने वाले हो, इधर उधर खा के अपना पेट भर लेना, तो तुम फंसोगे नहीं। हकान जी सही बात है। तो उसने वो सेंटेंस वो पूरा जो है ना श्लोक घोट लिया, तोते को रटवा दिया, शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, तुम जाल में नहीं फंसेंगे। अब गुरुजी ने सोचा भी बच्चा स्याणा हो गया है, खूब इसने ये पाठ याद कर लिया और कहा बेटा मैं तुझे छोड़ दूंगा, इस पर पूरा पूरी तरह से आचरण करना जो मैं तेरे को ज्ञान दिया है। हां जी पक्का गुरुजी। और आपके आसपास के सभी पक्षियों को तोतों को भी ये जो है ना अलर्ट कर देना, समझा देना, अकान जी जाते ही वे काम करूंगा। अब वो तोता छोड़ दिया, तोता पहुंचा अपने मूल स्थान पर, तो उसके साथी तोतों ने बड़ी खुशी मनाई भी कैसे पीछा छुटा तेरा। तो उसने बताया भी मुझे एक दयालु आत्मा ने मोल ले लिया और उसने मुझे छोड़ दिया और साथ में एक मंत्र बता रखा मेरे थे और इस मंत्र का मैं आजीवन पालन करूंगा, फिर मैं जाल में नहीं फंसूंगा। और तुम भी सुन लो जब जान बचाना चाहते हो तो। सारे तोते बोले वे हमने बता दी ऐसा कोई खास फॉर्मूला है तो उसने बताया कि भाई पर दी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। तो सब तोते बोले वह कमाल की बात से है, तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरुजी ने। ये वो सारे तोते ने वो मंत्र घोट लिया। एक शिकारी पहुंच गया वहां पर, साल 6 महीने के बाद तोते पकड़ने वाला, उसने जाके दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। अब उसने देखा कि सभी तोते ये रट लगा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो हम फंसेंगे ही नहीं, हम दाने नहीं खाएंगे। अब शिकारी ने सोचा भाई ये तो सारे तोते पढ़ा दिए किसी ने और शिक्षित हो गए, ये तो एक भी ना फंसा। तो उन्हें सोचा इतनी दूर आया हूं, चल थोड़ा हा ट्राई करके देख लेता हूं, एक आधा पा जाए अगर मूड वो तो फंसेगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया, उन्हें सोची तू रोटी खा ले, फंसना तो कोई है ही नहीं। उसने क्या देखा, जो गुरु जी बन रहा था ना, जो पहले पिंजरे में तो छोड़ दिया था, अब वो ये रटना भी लगा रहा है कि शिकारी आवेगा और दाने जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खावांगे, जाल में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले वो ये पहुंचा दाने खाने, फिर उसके सारे चेले सब गेल की गेल, फिर तो सारे इकट्ठे हो गए उसमें। अब शिकारी ने तुरंत वो जाल खींच लिया, सारे जाल के मां, और वो दाने खा रहे हैं, जाल में फंस रहे, फिर भी ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, शिकारी आवेगा जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे। अब शिकारी ने सोचा ये दवा कति बांडे बांडे हैं, भौके भौके थे, असर नहीं इनको। उसने वो सारे तोते ठाकर कमर पर घेर लिए, पाछे लटका के जाल में चल पड़ा। अब वो जाल में फंसे फंसे भी यही सेंटेंस बोल रहे हैं, शिकारी आवेगा जाल बिछावेगा, दाने डाल लेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। वो शिकारी करे भौके जाओ ये बेशक, ये तुमने पता लग गया, तुम्हारे जुबान जुबान पे है, हृदय में जगह नहीं थी। अब वो गुरुजी कुदरती मिल गया उनको, उसने देखा मेरे वाला सेंटेंस मंत्र ये तोते बोल रहे हैं, सारे जाल के मां फंसे पड़े हैं। तो उसने देखा है तो बड़े निकम्मे, और फिर भी बोले जा रहे हैं। तो पुण्य आत्माओं, जो ये ज्ञान प्रतिदिन आपको दिया जाता है और आप जी को विशेष उद्देश्य यही बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और इच्छा छुटवाओ इस गंदे लोक से, इस काल के जाल से, या कोई जीव सुखी नहीं। किसी भी प्राणी ने देख लो, आप चाहे अपना राष्ट्रपति दिखाई देता हो जो घोड़े की बुग्गी में चलता हो, वो जरा सा भी सुख नहीं है, ना प्रधानमंत्री को ना मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, किसी को भी सुख नहीं, ना किसी पैसे वाले को, निर्धन सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के ऊपर कदम टू कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, फिर वो मार नहीं खाता। तो जो पुण्यात्माएं सत्संग में आ रहे हैं, वो बालक है छोटे छोटे, और वो सुनते भी हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, गुरुजी क्या बता रहे हैं, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अमल करे बिना, इसको अपना प्रैक्टिकल किए बिना बात बने को नहीं, चाहे कितना ही कुछ कर लो। परमात्मा स्वयं ही आकर हमें क्या बताते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर आकर मिले गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, प्रांत हरियाणा, भारत में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जब 10 वर्ष के थे, गौओं के पाली गए हुए थे, चराह रहे थे उनको, तो ये ग्वाले थे, तो खेतों में आकर मिले थे। और उन्होंने उस प्यारी आत्मा को बहुत सारा ज्ञान समझाया। गरीबदास जी और अन्य वहां उपस्थित ग्वालों ने कहा, हे महात्मा जी, आप यात्री हो, अतिथि हो, राह चलते हो, आप खाना खाओ। तो परमात्मा ने कहा भी मैं खाना तो खाकर आया हूं, अपने गांव से, सतलोक से आया हूं मैं। तो पालियों ने कहा जी दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हम अतिथि को बगैर खाए पिए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। तो परमेश्वर ने लीला दिखानी थी, कहा कि भाई मैं कवारी गाय का दूध पीऊंगा। पाली ग्वाले कहने लगे कि महात्मा जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो, कवारी गाय कभी दूध देती है। तो गरीबदास जी महाराज की एक बहुत ही प्रिय गाय थी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में उसके एक धागा बांध रखी थी रस्सी, उसको पकड़ के और ला खड़ी करी। अब देखो महाराज जी, इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कहां से देगी, 10 वर्ष के बालक की जैसी भाषा होती है। परमात्मा ने कहा कि तुम इस पात्र को खाली करो जो तुम लाए हुए जल पीने का, एक लस्सी भी ले जाते थे गांव से, घर से अपना, इसको खाली करो, साफ करो। वो खाली करके साफ करके और कहा इसके नीचे रखो गाय के, उस गाय की लेवटी के नीचे रखा, ओड़ी के तरह। परमात्मा कबीर जी ने उसकी कमर पर थपकी मार दी, अपने आप दूध की धार बंद की, लंबे लंबे सतन हो गए उस कुंवारी गाय के। जब वो पात्र भर गया 5-7 किलो का, वो छोटा सा घड़ा था, उसी समय दूध बंद हो गया। आधा कबीर जी ने पिया, आधा शेष छोड़ दिया के लिए बच्चों पालियो तुम पी लो। वो बड़े बड़े पाली थे, वो कहने लगे ये पाप का दूध हम ना पियो, जादू जंत्र का है, जंत्र मंत्र करके निकाला आपने। गरीब दास जी बालक थे, कहने लगे मुझे दो भगवान मैं पीऊंगा। अब गरीब दास जी ने वो दूध पी लिया। गरीब दास जी ने दूध पी लिया और फिर परमात्मा से प्रश्नोत्तरी की, ज्ञान के बारे में जानकारी चाही। तब परमेश्वर ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो। कबीर जी ने पूछा गरीब दास बालक से, 10 वर्ष के बच्चे थे। वो कहने लगा जी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हम भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, राम कृष्ण की पूजा करते हैं, और अपने जो भी उनकी एकादशी द्वादशी थी उसकी भी पूजा बताई। तो परमात्मा ने कहा बेटा पूजा के योग्य केवल एक ही प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, और उसी का संदेशा देने के लिए मैं इस संसार में आता जाता रहता हूं। उसी परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये राम कृष्ण विष्णु जी के अवतार, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। इनकी साधना से तुम्हारी जन्म मृत्यु की ये परंपरा समाप्त नहीं हो सकती, जन्म मरण का रोग नाश नहीं हो सकता, और यहां प्रत्येक प्राणी बहुत दुखी है। ये गायें हैं और पशु पक्षी अन्य हैं, ये भी कभी मनुष्य थे, आज देखो ये गर्मी सर्दी इनको कितना दुखी कर रही है। किसी का चीचड़ लग रहे हैं, किसी का जोक चपटकी, किसी को कोई तकलीफ है बोल कर बता नहीं पा रहा है। यानी ऐसा मार्ग में ज्ञान दिया परमात्मा ने, वो गरीब दास बच्चे की आत्मा एकदम पिंगल गई, मेल्ट होगी कि हे भगवान है तो ये दुख, क्या हम भी फिर ये पशु बनाएंगे? कहां बेटा, वो बनेंगे जो भक्ति नहीं करते। कि वो बच्चा कहता है जी भक्ति तो हम करते हैं, भगवान राम की जय बोलना, कृष्ण जी की जय बोलना, कोई मिला उसको राम राम कहते हैं। परमात्मा ने कहा बेटा ये राम और कृष्ण ये कंप्लीट गॉड नहीं है, इनसे ये दुख मिट नहीं सकता, इनका अपना भी नहीं मिटा हुआ, ये भी अपने कर्म के दंड को भोगते रहते और इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। एक अविनाशी परमात्मा और है, और उसी का संदेशा देने के लिए मैं आया हूं। अपने आत्माओं जो श्रोता प्रथम बार आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त श्रद्धालु परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने मित्रों को, अपने भाई को, बहनों को, रिश्तेदारों को जाकर के बार बार आग्रह करते हैं कि आप जी एक बार चलकर वो सत्संग सुनो, तो वो बेचारे आ जाते हैं। और वो ये सुनते हैं कि राम और कृष्ण नाशवान है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी नाशवान है, हमने तो कभी सुना नहीं, ये तो बात जची नहीं। किसी वस्तु को जो नई वस्तु है, नया ज्ञान है, उसको हृदय में समाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पग पग पर जरूरत पड़ती है। तो दास का यही प्रयत्न रहता है कि चाहे 10 व्यक्ति भी समझे इस ज्ञान को, पर वो थोरोली समझ जाए, कंप्लीटली समझे, और फिर वो आगे चल के अपने प्यारी आत्माओं को, भाइयों को, बहनों को, अपने नातियों को फिर वो समझाएंगी, जाके समझाएंगे तो फिर वो ऐसा दृढ़ता से समझा देंगे और फिर वो अपने आप नाम लेने के लिए दौड़े आओगे, कल्याण करवा लेंगे, उनका भला हो जाएगा। देखिएगा ये देवी भागवत, इसमें दिखाते हैं राम और कृष्ण विष्णु भगवान ये नाशवान है। संक्षिप्त देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, विष्णु जी का जन्म भी आपसे हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे चार बातें सिद्ध होगी। एक तो ये होगी कि ब्रह्मा और विष्णु और शिवजी ये नाशवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दास नहीं कह रहा, इनकी हिस्ट्री सीट बता रही है, इनकी जीवनी में लिखा है। दास तो पढ़कर सुना रहा है। और जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजी थे, जो केवल भाषा संस्कृत अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो इनके इतिहास को समझ नहीं सके। ये दंत कथा लोक वेद सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, सभी ब्रह्मांडों के कुल मालिक हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। और इनकी जीवनी में लिखा है, जीवन चरित्र में लिखा है, इनकी पवित्र कहानी में लिखा है, कथा में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है। और ज्योति निरंजन जिसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको शर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन और यही काल भी कहलाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। और इस ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर इनको तपस्या पर भून कर सूक्ष्म शरीर को उसमें से वो मैल निकालकर पीने और खाने का। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है और इनको तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी और तमगुण युक्त शंकर जी। तो इसमें ये चार बातें सिद्ध होगी, चार कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। एक तो ये, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। तीसरा ये हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। और चौथा ये है कि नियमानुसार कार्य करने में ही तत्पर रहते हैं, यानी कि हम किसी के भी भाग्य को, जो उसके भाग्य में लिखा है, पुण्य और पाप को घटा बढ़ा नहीं सकते। जो जितना जिसका संस्कार है उसको नियमित ही दे सकते हैं। पुण्य आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने जब परमेश्वर के मुख से ये बात सुनी, बालक था, कहने लगा, भगवान हमने तो यही सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। और स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं है। तो परमेश्वर ने बताया बेटा स्वर्ग तो ऐसा है जैसे गर्मी के महीने में कोई धनी व्यक्ति 20,000-30,000 रुपए ले जा, आजकल तो 20-30 में भी काम ना चला, 50,000-60,000 ले जाने पड़ेंगे, और फिर चला जा कुल्लू और मनाली शिमला साइड में गर्मियों के महीने में, हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये ऐसे जो गर्मी सर्दी जहां पर प्रत्येक सीजन आती है ऋतु में, तो उनमें से एक व्यक्ति एक वर्ष जो कमाया उसमें कुछ ज्यादा हो गया, कुछ धन लेकर के शिमला में या कुल्लू मनाली साइड में चला जाता है और वहां जाकर के होटल में कमरा किराए पर लेता है और महीने 20 दिन 2 महीने वहां सैर सपट्टा करके 1,00,000 रुपया बर्बाद करके वो अपनी जेब से खत्म करके और फिर मुंह लटका के वापस आना पड़ता है उसी कर्म क्षेत्र में। वहां फिर सारा वर्ष कमाई करो, हो सकता है अगले वर्ष इतना पैसा ना बचे कि वो सैर सपट्टा करके आ सके, तो फिर उस गर्मी में वही तड़पता रहेगा। तो ऐसे ये स्वर्ग है, वेदों से शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है और वेदों अनुसार जो साधना करना है उसमें ओम नाम है और 5 यज्ञ। इस साधना से स्वर्ग महास्वर्ग तक प्राणी चला जाता है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग वहां गए हुए साधक जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, पुनर्वर्ती में है, वहां जाने के बाद भी पुनः जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, अपने पुण्यों को समाप्त करके कर्म भोगने के लिए फिर आना पड़ता है, फिर कभी मनुष्य जन्म मिले तो फिर पुण्य बने या ना बने तो फिर स्वर्ग से भी वंचित रह जाता। इतना समझो ये स्वर्ग है जैसे होटल में जाकर 2 महीने रेस्ट कराया, अपनी पूंजी बर्बाद की, वापस आ गया। ऐसे ही अपने पुण्य होने पर स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग में अपने पुण्य समाप्त करके खर्च खाकर और फिर वापस पृथ्वी लोक पर की तो पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है। ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, और कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी कुंजर हाथी तक लेकर चीटी तक, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार धारक आया करते यहां पर, ये चतुर्भुजी भगवान कहां हैं, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखा पुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, ये भी इस काल के अरहट वाले कुएं में बंधे हुए हैं, इनका भी ऐसे ही चक्कर बंधा हुआ है। इब अरहट का कुआ कैसा होता है ये दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये एक कुआ है, ये इतना ये कुआ है, इसमें ये जल भरा हुआ है और ये हरट एक रहट होता था, अरहट बोलते हैं इसको। यहां एक पुली लगा दी जाती थी, इस पुली के ऊपर के चैन चलती थी, ये चैन, और चैन के बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी, ये बाल्टियां वेल्ड कर रखी है, ये चैन चलती थी, इसको बैलों से चलाया जाता कोल्लू की तरह, तो ये पुली चलती थी तो ये चैन भी नीचे आती थी, बाल्टी यहां से बाल्टियां भरती और ऊपर जाके यहां खाली हो जाती और ये जल बाहर खेतों में चला जाता, सिंचाई के काम लेते हैं। यहां क्या बताया है कि जैसे नीचे से पानी भरा बाल्टियों ने, ऊपर आके खाली होगी, फिर भरके लेगी, फिर ऊपर गई फिर खाली होगी, फिर भरका आई फिर खाली होगी, फिर नीचे से भरी, फिर ऊपर जाकर खाली होगी, फिर भरी, तो ये चलता ही रहता था सारा दिन। तो इसमें क्या बताते हैं कि जैसे आप पुण्य इकट्ठे किए पृथ्वी लोक पर आके, ऊपर स्वर्ग में खाली किए, पाप नरक में खाली किए और फिर बाल्टी खाली वापस आ गई, फिर नीचे तबरी फिर चले, फिर नीचे तबरी फिर चले। तो इसमें कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और हर हट डोर बंधे सभा में इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और ये भी ऐसे ही अन्य योनियों को भी भोगते रहते हैं। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर डोर बंदे कई बार। और परमात्मा क्या बताते, अमर करो सतलोक पठाऊ तात बंदी छोड़ कहा। अब गरीबदास जी महाराज बालक थे छोटे से, और बच्चे के अच्छा और बुरा रंग जल्दी चढ़ा करे, और कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको परमात्मा स्पेशल आकर मिलते हैं और उनको अपने ज्ञान से अपने यथार्थ भक्ति से परिचित कराया करते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अपने अक्षेत्र में जिस भी समाज में उत्पन्न है अपनी लैंग्वेज में बोल बोल कर वो परमात्मा के बारे में कलम तोड़ व्याख्या करता है, पूरी दृढ़ता के साथ व्याख्या करता है। ये लक्षण है उस पूर्ण ब्रह्म के कि वो परमात्मा सतलोक से अपने निज धाम से गति करके आता है और अपनी विशेष पुण्यात्माओं को, वर्णीय पुरुषों को, दृढ़ भक्तों को, सच्ची आत्माओं को, दृढ़ आत्माओं को, जो उनके विशेष भक्त हैं, उनको आकर मिलता है, फिर उनको ज्ञान बताता है। अब ये भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा, देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल अनुवाद करके इनका ये इकट्ठे जल्द किए हुए 9-10 मंडल, ये लिखा महर्षि दानंद सरस्वती, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, यहां से ये हमने खरीदा है। और ये क्या लिखा इन्होंने कि ऋग्वेद आर्य भाषा भाषे यानी अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद सरस्वती। और यहां देखो मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, ये इनका फोन नंबर है। अब हम अपने मतलब की बातें करेंगे, यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और मंत्र नंबर 26, इसमें क्या लिखा है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, अब ये यजुर्वेद है, इसमें ऊपर रह लगा है और ये संधि छेद कैसे करते हैं, इसमें दो अपसर्ग लगा देते हैं, यजु अलग कर देते हैं, वेद अलग। तो इस अगर कहीं यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो तो वहां अकेला यजु भी लिखा हो तो लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है, ये अंडरस्टूड है। तो यहां देखिए इन्हीं के द्वारा यजुर्वेद में महर्षि दानंद ने ही ऐसा किया है, ये ठीक किया है। यह देखो प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यजुर्वेद आर्य भाषा वासे संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृतिये, महर्षि दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है यजुर्वेद का पूरे के पूरे का। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसके 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये 36 में आ जाए और मंत्र नंबर ये 1 है, अथ 37 अध्याय आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में ये यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। इस यजु को यहां अनुवाद करते समय स्वामी जी ने ए मनुष्य जैसे मेरे आत्मा में प्राण और अपान ऊपर नीचे श्वास दृढ़ हो, दृढ़ हो मेरी वाणी मानस बल को प्राप्त हो, उस वाणी और उन श्वासों के साथ मैं शरीर बल को प्राप्त हो, ऋग्वेद रूप वाणी को प्राप्त हो। आगे देखो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल, यहां यजु शब्द है, यजु इसने यहां यजुर्वेद लिख दिया, क्योंकि यहां उस यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, वेशक ओनली यजु लिखा है तो ये यजुर्वेद है। तो अगर इस यजु का अर्थ लिख दे यहां यज्ञ सतुतियों को प्राप्त हूं, तो यज्ञों सतुतियां हैं कहां, किसमें है वो गुण, वो यजुर्वेद नामक पुस्तक को लिखना पड़ेगा। यजु के स्थान पर यजुर्वेद इन्होंने ठीक लिखा, लेकिन यहां ये स्वामी जी विचलित है क्योंकि वो परमात्मा का नाम कुछ नहीं मानता, ये कबीर परमात्मा का नाम है, हम इसको कबीर देव कहने लगे। तो यहां देखिए, यहां भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में यहां लिखा है कबीर वेदस्य, कबीर ये ऊपर रे लिखा है, तो इस रे को यहां दो अक्षर लगा दिए इन्होंने, ये कवि बना दिया, ये कवि। तो यहां कबीर देव लिखना पड़ेगा, जिसको ज्ञान है वो लिखेगा, इनको ज्ञान तो था ही नहीं कुछ भी इसको, तो परमात्मा के बारे में, तो यहां कबीर देव लिखना चाहिए था, वो आप कबीर देव हैं, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेज गति से अध्यात्मक यज्ञ को जहां धार्मिक क्रियाएं होती हैं उन भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव लिख दे यहां पर, कबीर ना लिखो न शर्माव है, आप कबीर देव लिख दो, कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दे। अच्छा, अब तीसरे में लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 3 में लिखा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, यानी आते हो वहां पर जहां सच्ची साधनाएं के जो अनुष्ठान होते हैं, और पृथ्वी लोक लोकांतर में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं गति, यानी वहां ऐसे चलकर लोक लोकांतर में चलते हुए आप माने आप सर्वव्यापक नहीं, इनकी थ्योरी गलत थी इसलिए इन्होंने बीच में डंगा डाल लिया अपना, आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर, अब सर्वव्यापक तो पहले था तो इनकी बात मानना था, गतिशील की तो हो गया फिर वो, तो गति स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। इससे हमने इतना ही लेना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, और वो क्या करता है ये देखिएगा, उनका उद्देश्य क्या होता है आने का, कि इन भोली आत्माओं को जो काल के जाल में फंस के इतना कष्ट उठा रहे हैं, किसी की कोई दुर्गति हो रही है, किसी को कोई टेंशन है, सारा दिन रोटी का ही गुजारा ना होता, सारा जीवन बीत जाता है इन बेचारों का, जैसे चीटी ने देख लिया सारा दिन इधर उधर गोली हो ही रहे है, कभी किसी पशु पक्षी के पैर के नीचे आकर मर जाती, ऐसे ही मनुष्य एक पेट के लिए मारो मार देख लो कि तो किसी शहर में जाकर देख लो बड़े से घूमे घूमो रहे नोम जा रहे हैं लाखों किस्म का, कोई कारों में कोई मेट्रो में कोई कैम, दुनिया भाग रही है फिर इधर भाग रही है, यार रस्ते में कितना मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है या बीमारी हो जाती है कुछ और एक्सीडेंट में, और वो पेट पूरा ना होता है इनका, या इतने दुखी। अब पीछे पोलैंड के वो पूरा कैबिनेट, पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट है जिसमें राष्ट्रपति भी सारे मंत्री भी एक सेकंड में खत्म हो गए, और वो भी नए रेल हो जहां थे, फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसा करेंगे उनको ऐसे कर देंगे, करना था इस जीव ने वो इनको पता ही नहीं करना क्या चाहिए, जो करना चाहिए वो तो इनको ज्ञान भी नहीं होता, और ज्ञान होता तो शास्त्र विरुद्ध होता, उसे साधना से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए सभी भोली आत्मा नास्तिक होती जा रही है कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो साधना हम गलत कर रहे हैं। जब हम साधना सही करेंगे तो क्यों ना मिलेगा, परमात्मा का विधान बता रहा है, पिछले इतिहास बता रहे हैं। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 इसके मंत्र नंबर 1 में यह स्पष्ट लिखा है पर कबीर देव, ये कबीर देव है स्पष्ट लिखा है। कबीर देव वित्तीय अयो वारे भी अर्सित, या देखिए वह परमात्मा इन्होंने क्या कर दिया, ये स्पष्ट लिखा है यहां पर कबीर देव है, इसको न्यो का न्यो लिख देते कबीर देव यानी कबीर कबीर देव लिख दे, वो कबीर देव है वह परमात्मा, न्यो का न्यो लिख देते वो कबीर देव है और अवे माने सबका रक्षक है। अवे माने का अर्थ होता है वैसे अविनाशी है, अवे अवे चलो सबका रक्षक है यही मान लेते हैं। और ये देवित नहीं तृप्ति के लिए, देव तो यहां जाना चाहिए था कबीर देव, ये कबीर साहब कबीर भगवान तृप्ति के लिए यानी विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, यानी वो परमात्मा तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वहां से चलकर आता है वो कबीर देव ज्ञान देता है। और सवहन यानी सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में त्रिकृष्ट करने वाला है। परमात्मा का उद्देश्य क्या होता है यहाँ आने के लिए कि वो ज्ञान देने के लिए यथार्थ ज्ञान बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है। फिर वो पुण्यात्मा उस परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होकर के और पूरे विश्व में यानी अपने पूरे क्षेत्र में उस तत्व ज्ञान का ढोल बजाते हैं। अपुण्यात्माओं आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में परमेश्वर कबीर जी कबीर साहब कबीर देव उनका ओरिजिनल नाम है, बाकी तो परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी प्रभु ये उपमात्मक नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ और होता है, और प्रधानमंत्री कहो उनको प्राइम मिनिस्टर कहो ये उनके उपमात्मक पदवी के नाम है, तो ऐसे उस परमात्मा का वास्तविक नाम है कबीर देव। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव को कबीर साहब, देव माने परमेश्वर। तो वो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये लीला की थी और बीच बीच में भी जब चाहे वो आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो उन्हीं में से एक श्रेष्ठ आत्मा महान आत्मा पुण्य आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दज्जर प्रांत हरियाणा भारतवर्ष में हुए हैं, जिनको परमेश्वर आकर मिले थे, जो आज वेदों में उस परमेश्वर की महिमा जो कि तो लिखी है वो ऐसी लीला करता है, उसको पहचानने का ये तरीका है। और परमेश्वर जब आए थे 600 वर्ष पहले वो अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास जी साहब को बताए थे कि धर्मदास ये वेद मेरा ही भेद है, इन चारों वेदों में मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी है, पर इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता, यानी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, प्राप्ति मीन सतलोक नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु का छुटकारा नहीं हो सकता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं मेरी प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु का रोग कटे तुम्हारा, सतलोक में प्राप्त हो, वो विधि इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है, बाकी शेष महिमा मेरी ही वेद गा रहे हैं।